दिन भर तारीख 13 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। दुनिया में सबसे लंबे समय तक राज करने वाले थाई किंग पूमिपोन अद्युनदेत नहीं रहे।
जो वो कहते थे, यद्यपि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राजा थे, लेकिन उनका प्रभाव इतना था कि जो वो कहते थे उसको थाईलैंड का हर वर्ग सर्वोच्च आदेश मानती थी।
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि समान नागरिक संहिता भारत के लिए सही नहीं है।
अलग अलग रीत रिवाज है, सबों को खत्म करके एक कानून में बांधने की कोशिश इंतहाई नामुनासिब है।
कार्यक्रम में होगी आपकी राय भी, खबरें और भी होंगी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार तृप्ति श्रीवास्तव से। थाईलैंड के राजा पूमिपोन अद्युनदेत का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। बीबीसी के बैंकॉक संवाददाता जोनाथन हेड ने बताया कि राजमहल के अधिकारियों ने राजा की मृत्यु की पुष्टि की है। वो दुनिया में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजा रहे। पूमिपोन पिछले कई साल से बीमार थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उनकी तबीयत और बिगड़ गई थी। पूमिपोन 1946 से थाईलैंड के राजा थे और उन्हें ऐसी ताकत के रूप में देखा जाता था जो थाईलैंड को एक रख सके। ऐसी आशंका है कि उनकी मृत्यु के बाद देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो सकती है। थाईलैंड में इस समय सैन्य शासन है। अमरीकी गीतकार और गायक बॉब डिलन को साल 2016 का साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार की घोषणा स्वीडिश अकादमी ने की, जिसमें कहा गया कि अमरीकी गीतों को नया आयाम देने के लिए 75 साल के बॉब डिलन को ये पुरस्कार दिया जा रहा है। 60 के दशक में अपने गिटार और माउथ ऑर्गन से संगीत की दुनिया में आए बॉब डिलन को लोकगीतों का रॉक स्टार भी कहा जा सकता है। बॉब डिलन अमरीका में ही नहीं, दुनिया भर के संगीत प्रेमियों में प्रिय रहे हैं। सीरिया के शहर एलेप्पो में बचाव दल के कर्मचारियों का कहना है कि विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में 13 लोग हवाई हमले में मारे गए हैं। बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू में मॉस्को में संयुक्त राष्ट्र के राजदूत विताली चुरकिन ने कहा कि उनके देश को सीरिया में मारे गए नागरिकों की मौत पर अफसोस है। उनका कहना है कि ऐसा सीरियाई सरकार की मदद के लिए की जा रही आक्रामक कार्रवाई की वजह से हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि रूस केवल अलकायदा से जुड़े चरमपंथियों को निशाना बना रहा है।
If they somehow were affected by our military campaign, of course, we regret it incredibly.
अगर सैन्य अभियान से नागरिक प्रभावित हो रहे हैं तो इसका हमें बेहद अफसोस है और हमारे मन और आत्मा पर भारी बोझ है। आप जानते हैं कि हम एलेप्पो में अल नुसरा को निशाना बना रहे हैं, जो हमारे विरोधी गुट के हैं। मैंने पूर्वी एलेप्पो में किसी भारी बमबारी के बारे में नहीं सुना, तो अगर वहाँ बमबारी हुई है और उसमें कुछ नागरिकों को चोट लगी है तो ये अच्छा नहीं है, लेकिन युद्ध के दौरान ऐसा होता है। ये थे विताली चुरकिन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पाकिस्तान में ईसाई महिला आसिया बीबी को ईष्ट निंदा के आरोप में मिली मौत की सजा के खिलाफ सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर दी है। सुनवाई करने वाली पीठ के एक जज ने इस मामले से खुद को अलग कर लिया। उनका कहना है कि वो इससे जुड़े एक और मामले की सुनवाई कर चुके हैं, ऐसे में हितों का टकराव हो सकता है। आसिया बीबी को 2010 में पैगम्बर मोहम्मद के अपमान के आरोप के तहत हाईकोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। पिछले सुप्रीम कोर्ट ने सजा निलंबित कर आसिया बीबी को अपील करने की छूट दी थी। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिनभर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। जैसा कि आपने समाचारों में सुना, थाईलैंड के किंग पूमिपोन अद्युनदेत का निधन हो गया है। थाईलैंड के राजमहल ने राजा की मृत्यु की पुष्टि की। राजमहल की ओर से की गई इस घोषणा को थाई टीवी चैनल पर प्रसारित किया गया। इस विशेष प्रसारण में कहा गया कि गिरती तबीयत के चलते 3 अक्टूबर 2014 को अस्पताल में भर्ती राजा पूमिपोन का स्वास्थ्य राजकीय डॉक्टरों की ओर से भरपूर कोशिशों के बाद भी सुधर नहीं पा रहा था। 3:52 पर शांतिपूर्ण तरीके से उनका निधन हो गया। उन्होंने 70 साल तक शासन किया। उधर जैसे ही ये समाचार अस्पताल के बाहर राजा की तबीयत का हाल जानने जुटी भीड़ तक पहुंचा, माहौल गमगीन हो गया। लोग रोने बिलखने लगे। किंग पूमिपोन दुनिया में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजा थे। पिछले कई सालों से वो बीमार थे। 88 साल के पूमिपोन 1946 से थाईलैंड के राजा थे और उन्हें ऐसी ताकत के रूप में देखा जाता था जो कि थाईलैंड को एक रख सके। थाई राजशाही के महत्व के बारे में 1980 में आई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री सोल ऑफ द नेशन द रॉयल फैमिली ऑफ थाईलैंड में बीबीसी संवाददाता डेविड लोमैक्स ने राजा का एक साक्षात्कार किया था। उन्होंने राजा से सवाल किया कि आप बतौर राजा अपना क्या कर्तव्य समझते हैं, थाईलैंड को राज बनाने के लिए जरूरत क्या पड़ी, तो उन्होंने कहा, वो ये कह रहे थे कि ये बात मेरे कहने की नहीं है, मैं नहीं जानता कि एक राजा किसे कहा जाना चाहिए, ये बड़ी समस्या है क्योंकि मेरी पदवी को यही कहा जाता है, मुझे राजा कहा जाता है, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो मेरे कर्तव्य एक राजा के कर्तव्य नहीं है, ये कुछ ऐसा है जिसे विश्लेषित करना बहुत कठिन है, इसलिए मैं वो करता हूँ जो मैं सोचता हूँ, जो उपयोगी है, और यही सब कुछ है। अब से कुछ देर पहले मैंने बात की थाईलैंड में भारत के राजदूत रहे विवेक काटजू से और पूछा कि किस तरह से दुनिया उन्हें याद रखेगी।
थाईलैंड के राजा जिन्होंने गद्दी संभाली थी 1946 में और इस तरह दुनिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग राजा थे, वो अपने देश में बहुत लोकप्रिय थे और क्योंकि वो देश में लोकप्रिय थे इसलिए उनकी दुनिया भर में इज्जत थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने देश के हित के लिए समर्पण कर दिया। थाईलैंड में जो वो कहते थे, यद्यपि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राजा थे और उनकी जो शक्तियां थी वो संविधान के तहत सीमित, लेकिन उनका प्रभाव इतना था कि जो वो कहते थे उसको थाईलैंड का हर वर्ग, हर नागरिक और सरकार, चाहे वो मिलिट्री की हो या चुनी हुई सरकार हो, सर्वोच्च आदेश मानती थी। और कई बार तो उन्होंने थाईलैंड के राष्ट्रीय जीवन में इशारे से एक स्टेबिलिटी दी, एक स्थिरता दी, जो कि थाईलैंड में स्थिरता बरकरार रखी।
राजा बहुत लोकप्रिय थे, तो अपने कामों की वजह से लोकप्रिय थे,
अपने चरित्र की वजह से, अपने कामों की वजह से, वो उनके बहुत प्रोजेक्ट चलते थे देश भर में और ये उन्होंने अपने कार्य संभालने के बाद ही से ये आरंभ कर दिया। लोगों में जाते थे, वो क्लाइमेट के बारे में क्लाउड सीडिंग की एक उन्होंने सिस्टम शुरू किया था जिसके वजह से थाईलैंड का जो कृषि क्षेत्र था उसमें उनका बड़ा योगदान हुआ। उन्होंने चरित्र और कार्य दोनों की वजह से लोगों में एक ऐसा स्थान बनाया था कि उनकी पूजा होती।
कोई ऐसा काम जो कि उनको डिफाइन करता हो?
उनकी एक सरलता, अपनी विल इम्पोज नहीं करते, वो इशारे से दिखा देते थे कि किस राह में वो जाना चाहते थे। एक मिसाल के तौर पर मैं बताता हूँ, मुझे ये बताया जाता था कि बैंकॉक का ट्रैफिक एक जमाना था जब बहुत ही खराब था, बहुत शोर मचता था। एक बार शायद उन्होंने इशारे से ये कह दिया कि मैं तो आजकल बैंकॉक की सड़कों पे निकलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि शोर की वजह से मुझे बहुत बुरा लगता है। उस दिन के बाद बैंकॉक में लोग जो कि कारों में जाते थे उन्होंने हॉर्न बजाना एक किस्म से बंद ही कर, ये उनका प्रभाव।
थाईलैंड में भारत के राजदूत रहे विवेक काटजू बता रहे थे कि किस तरह के किंग थे। किंग पूमिपोन और उनके जीवन का सफर कैसा था, सुनिए सुशीला सिंह से।
पूमिपोन का जन्म 5 दिसंबर 1927 के दिन अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य के कैम्ब्रिज इलाके में हुआ था। उनके पिता प्रिंस माहिडोल अदुन्येदेत उस समय हार्वर्ड में पढ़ाई कर रहे थे। बाद में उनका परिवार वापस थाईलैंड आया। जब पूमिपोन मात्र 2 साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। बाद में पूमिपोन की माँ स्विट्जरलैंड चली गई और वहीं पर पूमिपोन की शिक्षा दीक्षा हुई। एक युवा के तौर पर पूमिपोन को फोटोग्राफी, खेलने और सैक्सोफोन बजाने और गीत लिखने का शौक था। वो पेंटिंग और लेखन भी करते थे। 1932 में थाईलैंड में राजशाही खत्म कर दी गई, जिसके बाद से ही थाई राजशाही का पतन होने लगा। 1935 में एक बड़ा झटका तब लगा जब पूमिपोन के चाचा किंग प्रजादीपोक ने राजा का पद छोड़ दिया। इसके बाद राजगद्दी पूमिपोन के बड़े भाई आनंद के पास, जो उस समय केवल 9 वर्ष के थे, चली गई। 1946 में किंग आनंद की निशानेबाजी में दुर्घटना में मौत हो गई। ये घटना राजमहल की थी और इस बारे में पूरे विवरण कभी नहीं आए। पूमिपोन जब गद्दी पर बैठे तो वो मात्र 18 साल के थे।
भूमिपोन के राज की शुरुआत में कई साल उनके प्रतिनिधि ने शासन किया क्योंकि वे पढ़ने के लिए स्विट्जरलैंड लौट गए। पेरिस में उनकी मुलाकात भावी पत्नी सिरिकीत से हुई जो फ्रांस में थाईलैंड के राजदूत की बेटी थी। उन्होंने 28 अप्रैल 1950 में विवाह कर लिया। इसके ठीक एक हफ्ते बाद बैंकॉक में एक नए सम्राट के रूप में उनका राज्यारोहण हुआ। भूमिपोन के शासन के शुरू के 7 साल तक थाईलैंड में सैनिक शासन था और सम्राट नाम के ही सम्राट थे। सितंबर 1957 में जनरल सरित धनराजत ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। सरित के सैनिक शासन में राजा भूमिपोन ने राजशाही को पुनर्जीवित किया। सरित ने उस प्रथा को एक बार फिर शुरू कर दिया जिसमें लोग सम्राट के सामने अपने हाथों और घुटनों के बल रेंगते थे। सैनिकों ने 1973 में जब लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों पर गोलियां चलाई तो भूमिपोन ने नाटकीय रूप से हस्तक्षेप किया। प्रदर्शनकारियों को राजभवन में शरण लेने की छूट दी गई। इसका नतीजा ये हुआ कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जनरल थानम कित्तिकार्चन के शासन का अंत हो गया। साल 1992 में पहले के सैनिक विद्रोह के नेता जनरल सुचिंद कृपयायून ने प्रधानमंत्री बनने की कोशिश की और उनके खिलाफ वे विरोध प्रदर्शन पर गोलियां चलाई गई जिससे कई दर्जन प्रदर्शनकारी मारे गए। राजा ने सुचिंद और लोकतंत्र समर्थक नेता चामलंग श्रीमोंग को तलब किया और उन्हें राजशाही परंपरा के मुताबिक घुटनों पर चलकर राजा के सामने पेश होने को कहा। सुचिंद ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद हुए आम चुनाव के बाद लोकतांत्रिक सरकार की वापसी हुई। प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावाट के नेतृत्व के संकट के समय साल 2006 में राजा को हस्तक्षेप करने के लिए बार बार कहा गया। अप्रैल में हुए चुनाव थाकसिन जीत गए थे पर अदालत ने इसे रद्द कर दिया। राजा के प्रभाव को काफी महत्वपूर्ण माना जाता था। अंत में एक रक्तहीन सत्ता पलट में थाकसिन को पद से हटा दिया गया और सेना ने राजा के प्रति आस्था जताई। अगले कुछ साल तक थाकसिन के समर्थक और विरोधी दोनों के बीच सत्ता संघर्ष चलता रहा और दोनों ही धड़े राजा के नाम और उनकी छवि का इस्तेमाल करते रहे। साल 2008 में राजा के 80वें जन्मदिन के मौके पर जश्न में पूरा देश शामिल हुआ। इससे थाईलैंड के समाज में उनके अनूठे स्थान का पता चलता है। जनरल प्रयुत चान ओचा ने तख्ता पलटकर मई 2014 में सत्ता पर कब्जा कर लिया। उसके कुछ महीनों बाद सेना की ओर से नियुक्त संसद ने चान ओचा को प्रधानमंत्री बना दिया। राजा भूमिपोन के लंबे शासनकाल में देश में कई तरह के राजनीतिक उथल पुथल हुए। ये उनका कूटनीतिक कौशल और आम जनता तक पहुंचने की सलाहियत ही थी कि उनकी मौत के बाद थाईलैंड में राजशाही पहले से अधिक मजबूत है।
दुनिया में सबसे लंबे समय तक राज करने वाले थाई किंग भूमिपोन अदुन्नेदित नहीं रहे।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर। रुख भारत का करते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि समान नागरिक संहिता भारत के लिए सही नहीं है और संविधान भारतीय नागरिकों को मजहब की आज़ादी देता है। हाल ही में विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता को लेकर एक प्रश्नावली जारी की है जिसमें आम लोगों से इस पर राय मांगी गई है। मुस्लिम संगठनों ने सरकार की इस पहल का विरोध किया है। क्या कुछ है ये मामला और क्यों हो रहा है विरोध, सुनिए सलमान रावी की रिपोर्ट में।
विधि आयोग ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लेकर जो प्रश्नावली जारी की है उसमें कुल मिलाकर 16 बिंदुओं पर राय मांगी गई है, मगर पूरा फोकस इस बात पर है कि देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान संहिता होनी चाहिए या नहीं। इनमें विवाह, तलाक, गोद लेना, गार्जियनशिप, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार और विरासत शामिल हैं। आयोग ने इस पर भी राय मांगी है कि क्या ऐसी संहिता बनाई जाए जिसकी वजह से अधिकार समान तो हों मगर देश की विविधता भी बनी रहे। मगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि भारत में विविधता है इसलिए समान नागरिक संहिता देश के लिए मुनासिब नहीं है। बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना वली रहमानी कहते हैं,
हम सब लोगों की एक राय है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस मुल्क के लिए किसी तरह मुनासिब नहीं है। ये मुल्क गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है। यहाँ मुख्तलिफ मज़हब के मानने वाले रहते हैं, मुख्तलिफ तहजीबों के मानने वाले रहते हैं, अलग अलग रीत रिवाज है। सबों को ख़त्म करके एक कानून में बांधने की कोशिश इंतहाई नामुनासिब हरकत है।
मौलाना वली रहमानी का कहना था कि भारत में सभी नागरिकों को अपने धर्म के हिसाब से अपने मामले तय करने की पूरी आज़ादी है।
कॉन्स्टिट्यूशन ने हम सब लोगों को अपने मजहब की बुनियाद पर जीने, प्रैक्टिस करने, रस्म और रिवाज को कायम रखने की गारंटी दी है। अगर उस गारंटी के साथ छेड़छाड़ की जाएगी तो इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट और लॉ कमीशन उस एग्रीमेंट के खिलाफ कर रही है जो एग्रीमेंट भारत के हर एक नागरिक का भारत के साथ है।
वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सरकार अदालत के निर्देशों का पालन कर रही है। संगठन के नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह कहते हैं,
इट इज ऑन द इनिशिएटिव ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू लॉ कमीशन इज टेकिंग द ओपिनियन ऑफ ऑल।
सिद्धार्थ नाथ सिंह कह रहे थे कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की पहल पर विधि आयोग के जरिए समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर आम लोगों की राय ले रही है, फिर लोगों की राय के आधार पर वो अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेगी ताकि देश की सर्वोच्च अदालत को फैसला देने में आसानी हो। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता वीरप्पा मोइली कहते हैं,
देयर इज एथिक मल्टीपल रेसेस एंड वी आर द कास्ट।
वीरप्पा मोइली भी कह रहे थे कि भारत में कई धर्मों और संस्कृति के लोग रहते हैं, इसलिए समान नागरिक संहिता का कोई औचित्य ही नहीं है। विधि आयोग की प्रश्नावली में बहुत सारी ऐसी प्रथाओं के बारे में भी राय मांगी गई है जिनकी कानूनी मान्यता तो नहीं है मगर देश के किसी न किसी स्थान पर उनका प्रचलन है। सलमान रावी, बीबीसी दिल्ली।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक बार फिर से चर्चा में है। जेएनयू में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने दशहरे वाले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रावण दिखाते हुए उनका पुतला जलाया। जेएनयू में फूके गए मोदी के पुतले में 10 सिर बनाए गए थे जिसमें अमित शाह, बाबा रामदेव, आसाराम के मुखौटे भी शामिल थे। हमारे सहयोगी विनीत खरे आज जा पहुंचे जेएनयू लोगों से बात करने के लिए और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं से उन लोगों ने कुछ लोगों से बात की।
मैं इस वक्त हूँ जेएनयू कैंपस में। यही वो जगह है जहाँ पर विजयदशमी के दिन एक पुतला जलाया गया, 10 चेहरे थे उसके और उन चेहरों पर जो तस्वीरें थी वो बीजेपी नेताओं की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी एक तस्वीर थी जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। क्या एग्जैक्टली आप करना क्या चाह रहे थे?
मेरा नाम सुनीता मिन्ना है, एनएसयूआई से हूँ। जो हमने ये दहन किया है क्योंकि विजयदशमी हम लोग मनाते हैं बुराई के ऊपर अच्छाई की एक जीत के रूप में, असत्य पर सत्य की जीत के रूप में, उसमें हम दिखाते हैं हम बुराई के प्रतीक के रूप में हम नाथूराम गोडसे का, आसाराम का, साध्वी प्रज्ञा का, साक्षी महाराज का, अमित शाह का, इनका पुतला जलाए थे। क्योंकि
विजयदशमी के दिन अगर आप इस तरह का पुतला जलाते हैं, जो आरोप है कि जो प्राइम मिनिस्टर की जो पोजीशन है उसकी डिग्निटी पर असर पड़ता है।
पुतला जो है डेमोक्रेसी में सब प्राइम मिनिस्टर का जला है, जब कोई यहीं पर साबरमती ढाबा।
लेकिन सवाल उठता है विजयदशमी के दिन आपने ऐसा किया?
बाबा साहब ने आज से कुछ दशक पहले विजयदशमी के ही दिन उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर, जो उसमें कुरीतियां हैं, जो जाति व्यवस्था है, ऊंच नीच है, उसे छोड़कर उन्होंने बुद्ध धर्म अपनाया था एक प्रोटेस्ट के रूप। और ये भी हमारा एक प्रोटेस्ट है कि इस साल 125वीं बाबा साहब की जयंती है और इस साल नागपुर में बहुत बड़ा उमड़ाव था वो लोगों का था। वो मैं कुछ रोज पहले मैं नागपुर गया हुआ था तो हमें लगा कि नहीं, हमें बाबा साहब के जो विचार हैं, विचार मूर्ति नहीं, जय भीम नहीं, असल में जो उनके विचार हैं जो जाति व्यवस्था के अगेंस्ट है, क्योंकि जब से मोदी सरकार आई
है। लेकिन जो सिम्बोलिज्म है कि विजयदशमी के दिन हुआ ऐसा, तो गुड ओवर इविल, रावण सिंबोलिज्म से जोड़ते हैं।
जाति व्यवस्था इविल है और जो उसको सपोर्ट करते हैं, आरएसएस जो है उसे सपोर्ट करती है, वो इविल है।
एबीवीपी के हमारे छात्र नेता हैं आलोक, आपको क्या आपत्ति है? ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मामला है, पहले भी पुतले जले हैं और लोग अपनी बात रखना चाहते हैं।
नहीं, एफजी जले हैं लेकिन जो उसकी टाइमिंग है विजयदशमी के दिन, और जो प्रधानमंत्री वो हमारे और आपके प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं, और उन प्रधानमंत्री को रावण की तरह डिपिक्ट करना वो कंडेम करने वाली चीज है और उसकी जितनी निंदा किया जाए कम।
एबीवीपी ने पहले पुतले जलाए हैं?
पुतला जलाए हैं, विजयदशमी को प्रधानमंत्री का कभी पुतला नहीं जलाया है।
पुतला तो फूंका गया ना,
आप फूंका गया, लेकिन पुतला फूंकना डेमोक्रेटिक राइट है, लोकतंत्र है, यहाँ पर सबको हाके पुतला फूकने का। पर विजयदशमी के दिन रावण की तरह जो लोकतांत्रिक तरीके से बाबा साहब का अम्बेडकर के लिखे हुए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो प्रधानमंत्री चुना गया है बहुमत के द्वारा, आपने उसका अपमान किया।
लेकिन इनका कहना है रावण को भी पूजा जाता है जानवी, और पुतला फूंका जाए एक दिन या दूसरे दिन, आपको नहीं लग रहा आप छोटी सी बात को बड़ा बना रहे हैं?
हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि रावण को पूजा जाता, मोदी को कहीं नहीं पूजा जाता, उनकी आरती कहीं नहीं उतारी जाती है। और हमारे प्रधानमंत्री हैं, रिस्पेक्ट
सोनिया गांधी की पूजा उजा सब होती है। और जब देश आतंकवाद का, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का जब जला रहा है पुतला, जब आतंकवाद का जला रहा है, तो इनको तकलीफ हो रही है।
एनएसवाई में बताना चाहता हूँ, 2% वोट आता है टोटल वोटिंग, ये बोलते हैं जनता की बात करते हैं।
सफाया आपका भी हुआ है यहाँ पर। एनएसयूआई की सुनीता कुछ कहना चाह रही, बताइए सुनीता।
ये जो बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी आए थे और यहाँ पर जो एंटी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए, ये सबसे गलत बात है। वो एकदम नहीं आए थे, क्योंकि जिस तरह से हर स्टूडेंट को यहाँ पर एंटी नेशनलिस्ट बनाए, जो कॉमन स्टूडेंट थे वो डरे हुए थे, उनके सपोर्ट में आए थे, ना कि जिन्होंने नारे देशभक्त जो देश विरोधी के जो नारे लगाए थे उनके सपोर्ट में एकदम नहीं आए थे। और जिस तरह से जुमलेबाज यहाँ पर इस कैंपस में बैठे हुए हैं, इनको लगा कि हम 9 फरवरी का इंसिडेंट करवा कर हम यहाँ पर जीत जाएंगे, तो इसकी वजह से इस बार इनको JNU से पूरी तरह से साफ कर दिया है।
मेरा नाम नीरज है, मणिशंकर है, पाकिस्तान में जाते हैं और पाकिस्तान को बोलते हैं वहाँ के पैनलिस्ट को कि मोदी को हटाइए। सलमान खुर्शीद जाते हैं तो बोलते हैं नवाज शरीफ इज एन अपोस्टल ऑफ पीस। संजय निरुपम बोलते हैं कि हमें प्रूफ चाहिए। पूरा इंडिया जब रैली बिहाइंड कर रहा है प्रधानमंत्री मोदी के साथ, अभी क्या अभी नेशनल सिक्योरिटी का मामला
क्या है? लोगों को अपनी बात कहने का हक नहीं होना चाहिए? मान लीजिए उनको अलग आपसे अलग लगता है,
देखिए
तो क्या वो अपनी बात ना रखे?
मैं हम कभी इसको दबाए नहीं है, फ्रीडम।
मणिशंकर की अपने अपना एक व्यू हो सकता है।
मणिशंकर जी अभी अभी यहाँ पर आए हुए थे, ये बताइए नवाज शरीफ के गले मिलने कौन गया? मनमोहन सिंह यहाँ पर मौजूद, मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री, 10 साल नहीं गए, गले मिलने कौन गया? और हैप्पी बर्थडे में पठानकोट कौन लेकर आया?
मोदी का पुतला जलाए जाने पर विनीत खरे बात कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में NSUI और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से। और अब कार्यक्रम में आपकी राय।
आपकी राय में एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ इंदु पांडे, और आज है हमारे साथ
मैं हूं राजेश प्रियदर्शी। नमस्कार।
नमस्कार दोस्तों, तो फिर चिट्ठियों की शुरुआत करें राजेश जी।
जी बिल्कुल।
ये चिट्ठी हमारे पास आई है रामचंद्र सुथार की, ग्राम फलसुंड जिला जैसलमेर राजस्थान से। लिखते हैं कि सोमवार को आपकी राय में इंदु पांडे ने मेल तो मेरा शामिल किया, लेकिन नाम किसी और श्रोता का लिया।
आप ही बताइए, आप ही बैठी हैं यहाँ।
जी हाँ, मैं बस यही कह सकती हूँ कि ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि कई बार कुछ छोटी छोटी सी ऐसी गलतियाँ होती हैं जो हो जाती हैं और पता नहीं चलता,
लेकिन हम उसके लिए आपसे माफी मांगते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। और आगे लिखा है, ये हमारे दूसरे श्रोता हैं मलकापुर जिला बुल्हाणा महाराष्ट्र से मोहम्मद एहसान असगर ने। संडे की एक मुलाकात बहुत शानदार रही, विदित मेहरा जी को धन्यवाद। मोहम्मद एहसान असगर आगे कहते हैं कि इस बार इंडिया बोल में बहुत रुकावटें आईं, फिर भी मोहनलाल जी ने अच्छी तरह से हैंडल किया। ओमपुरी जी, ऐसा महसूस हो रहा था कि बहुत दबाव फील कर रहे हैं।
ये होता है अक्सर कि हमें तकनीकी दिक्कतें होती हैं, रुकावटें आती हैं, लेकिन उन सभी तमाम परिस्थितियों में ये एक प्रस्तुतकर्ता की जिम्मेदारी होती है कि वो कार्यक्रम को चलाए। मोहनलाल जी ने ऐसा किया, आपको अच्छा लगा, इसके लिए शुक्रिया। ओमपुरी जी की जो बात है वो ये है कि मुझे ऐसा लगा उस कार्यक्रम को सुन के कि वो थोड़ा ज़्यादा सतर्क थे, क्योंकि वो एक बार विवाद में रहे हैं और वो दोबारा कोई नया विवाद नहीं चाहते थे, इसलिए शायद ज़्यादा संभल कर बोल रहे थे।
और अब ये एक ईमेल है गणेश प्रसाद जी का, लिखते हैं, इन्होंने ये नहीं लिखा कहाँ से
जी।
बस अपना नाम लिखा है। कहते हैं कि दुनिया जहाँ में यमन की दुर्दशा के बारे में पढ़ के दुख हुआ। यमन वाकई दूसरा सीरिया बन रहा है। गुजरात के उच्च जाति के हिंदू लोग दलितों पर वार अत्याचार करने से तंग आकर सैकड़ों दलित बौद्ध धर्म ग्रहण कर रहे हैं, तो इन सब बातों पर ये काफ़ी बहुत ही दुखी हैं। और कहते हैं कि भाई भारत के देशवासी एकता बनाए रखें ताकि देश फिर से खंडित ना हो।
अच्छा, इन्होंने यमन और भारत इन दोनों मुद्दों पर अपनी चिंता जाहिर की है। हमें खत लिखने के लिए आपका शुक्रिया।
और हमारे पास एक ये ईमेल आया है, कहते हैं कि मैं BBC का बहुत पुराना श्रोता हूँ, 15 सालों से सुन रहा हूँ, लेकिन चिट्ठी पहली बार लिख रहा हूँ। ये अंग्रेजी भाषा के अध्यापक हैं और दिनांक 12 को जो दिन भर कार्यक्रम में सऊदी अरब और यमन के ऊपर रिपोर्ट पेश की गई थी वो सुना, और उसके बाद ये चिट्ठी लिखे बिना नहीं रह पाए, यानी कि इनको शायद बहुत पसंद आया।
जी, ये उसी यमन दुनिया जहान की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से।
जी, पूछते हैं नथुराम सेन, गाँव दल्लू सर तह सरदार शहर जिला चुरू राजस्थान से, कि आप इतनी जीवंत रिपोर्ट कैसे बना लेते हैं?
ये हमारा काम है, हम मेहनत करते हैं, और अगर हमारी रिपोर्टें आपको अच्छी लगती हैं तो आपका बहुत शुक्रिया, और जब आपको हमारी रिपोर्ट जीवंत न लगे तब भी हमें बताइएगा जरूर।
और दूसरा ईमेल है रवि शंकर उपाध्याय का, उत्तर प्रदेश से। कहते हैं कि 12 साल से मैं आपको सुन रहा हूँ, 120 पत्र भेज चुका हूँ, लेकिन एक भी पत्र शामिल नहीं हुआ।
मतलब हर साल तकरीबन 10 पत्र भेजते हैं, 12 साल से सुन रहे हैं 120 पत्र, यानी कि मेरे ख्याल से साल में 10, यानी हर महीने एक चिट्ठी से थोड़ा कम लिखते हैं। इनको मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप सुनते हैं और 12 सालों से आप पत्र भी लिखते रहे हैं। देखिए आज आपका पत्र शामिल हुआ है और हम ऐसे बहुत सारे श्रोता हमारे हैं जो हमें चिट्ठी लिखते हैं और ये शिकायत करते हैं कि उनकी चिट्ठी शामिल नहीं होती। उन सब से हम ये गुजारिश करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं उनको कि हमारे पास सैकड़ों हज़ारों की तादाद में चिट्ठियां आती हैं। हम अधिक से अधिक श्रोताओं की चिट्ठियों को शामिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये संभव है कि आपकी चिट्ठी कभी शामिल ना हो पाए। लेकिन देखिए जैसे आज शामिल हुई, आगे भी हो सकती है, आप बस लिखते रहिए। ये हम आपको ज़रूर बताना चाहते हैं कि आप जितनी भी चिट्ठियां लिखते हैं वो सब चिट्ठियां भले कार्यक्रम में न पढ़ी जाएं लेकिन पढ़ी जरूर जाती हैं।
और ये दूसरा ईमेल है, कहते हैं कि मैं अल्मोड़ा से वाग्मी हूँ, बीबीसी को सुनना सदा की तरह अच्छा लगता है लेकिन बीबीसी सुनने का समय नहीं मिल पाता क्योंकि होमवर्क बहुत होता है। तो ये पूछते हैं रेहान जी से कि क्या एक ऐसा विषय जिसमें शिक्षा के वास्तविक अर्थ को जान पाएं, शिक्षा को ग्रहण करने का हर संभव प्रयास करें, क्या इस पर कुछ आप कोई रिपोर्ट बना सकते हैं ताकि विद्यार्थियों को थोड़ी मदद मिल सके?
विद्यार्थी हमें बहुत बड़ी तादाद में सुनते हैं, आप भी सुनते हैं और आपकी चिट्ठी से लग रहा है कि आप बहुत मन लगाकर और बहुत मेहनत से पढ़ते हैं। शिक्षा का वास्तविक अर्थ संक्षेप में यही है कि हम अपने जीवन में लगातार सीखते रहें और नई नई जानकारी हासिल करते रहें, नई नई बातें समझते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। और अब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि हमारा वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है।
हमें तो पता बता दें?
जी बिल्कुल पता है, अगर आप हमें डाक से चिट्ठी लिखना चाहें तो पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 11003। और अगर आप हमें ईमेल भेजना चाहें तो पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
बीबीसी हिंदी सेवा के रेडियो कार्यक्रम आप शॉर्टवेव 16, 19, 25, 31, 41 और 49 मीटर बैंड यानी 7255, 11995, 11700, 7565, 7600 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर सुन सकते हैं। फ्रीक्वेंसीज की विस्तृत जानकारी हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर। 2016 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जाने माने गीतकार और गायक बॉब डिलन को दिया गया है। नोबेल समिति ने इस बारे में घोषणा करते हुए कहा कि अमरीकी गीतों को नया आयाम देने के लिए बॉब डिलन को ये पुरस्कार दिया जा रहा है। किसी गीतकार को संभवतः पहली बार उनके गीतों के लिए नोबेल दिया गया है। गीतों के लिए कवियों को नोबेल पुरस्कार दिए जा चुके हैं। 60 के दशक में अपने गिटार और माउथ ऑर्गन के साथ संगीत की दुनिया में आए बॉब डिलन को लोक गीतों का रॉक स्टार भी कहा जा सकता है। बॉब डिलन अमेरिका में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के संगीत प्रेमियों के प्रिय रहे हैं। उनके सबसे लोकप्रिय गीतों में लाइक अ रोलिंग स्टोन, ब्लोइंग इन द विंड और द टाइम्स दे आर चेंजिंग शामिल है। एक झलक सुनाते हैं।
Yes, and how many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is a blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
और अब कार्यक्रम में इससे पहले कि आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं।
बीबीसी समाचार। थाईलैंड के राजा पूमिपोन अदुन्यदेत का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो दुनिया में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजा रहे। अमरीकी गीतकार और गायक बॉब डिलन को साल 2016 का साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अमरीकी गीतों को नया आयाम देने के लिए 75 साल के बॉब डिलन को ये पुरस्कार दिया जा रहा है। सीरिया के शहर अलप्पो में बचाव दल के कर्मचारियों का कहना है कि विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में 13 लोग हवाई हमले में मारे गए। पाकिस्तान में ईसाई महिला आसिया बीबी को ईश इंदा के आरोप में मिली मौत की सजा के खिलाफ सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर दी है। नाइजीरिया के एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने जानकारी दी है कि 2 साल पहले बोको हराम ने जिन 270 स्कूली लड़कियों को अगवा किया था उनमें से 21 लड़कियों को आजाद कर दिया गया है। अमरीकी सेना ने यमन के रडार ठिकानों पर हमला किया है। अमरीकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन का कहना है कि 3 रडार ठिकानों को हमला करके नष्ट कर दिया गया है। बीबीसी समाचार।
तो हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिनभर के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे तिलक राज भाटिया। 1.5 घंटे बाद घटना चक्र लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।